Sì. Sri Jagannath Balaji. All glory to Sri Samudavodhi. All glory to Samudavodhi. All glory to Samudavodhi. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. आपको जगन्नाथ जी की कथा पता है? सुनना चाहते हो संक्षेप में? ओम ज्ञान तिमिनंदस्य ज्ञानंजनम चक्षुर्मिलयेन श्री चैतन्य मनोवृत्तम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. आप सब पंजाबी बाग रोहिणी मंदिर के साथ जुड़े हो. आप सब जुड़े हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है. इस्कॉन संस्था के साथ केवल वही भक्त जुड़ते हैं जिनकी भक्ति योग में रुचि है. और चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयानिया, उनकी भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी में जितने नगर हैं गांव हैं सब जगह क्या होगा, यह हरिनाम पहुंचेगा. आज आप विश्व के लगभग किसी कोने में भी जा सकते हो, आपको इस्कॉन के भक्त मिलेंगे. मैं परसों ही रशिया से लौटा हूं और हमारा एक उत्सव होता है जिसे हम ब्लैक सी फेस्टिवल बुलाते हैं. रशिया में एक पानी तो सफेद है पर वो दरिया का नाम ब्लैक सी है, पता नहीं क्यों. और उस इलाके में इतनी ठंड नहीं है जैसे मॉस्को में, तो परसों बड़ी काफी ठंड थी. पर ये जो ब्लैक सी का इलाका है वहां जैसे भारत में कश्मीर माना जाता है बड़ा अच्छा स्थान, वैसे वहां इतनी ठंडी नहीं है ना गर्मी, बड़ा अच्छा मौसम है. तो वहां हर साल सितंबर के महीने में इस्कॉन के उत्सव होता है. लगभग 8000 रशियन डिवोटी थे उस उत्सव में एक हफ्ते के लिए और सारा दिन सेमिनार चल रहा है. तो इस प्रकार विश्व के हर कोने में लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं. प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया था जिनका आगे अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो चुका है. और लोग क्यों इसे स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का असली संदेश है. और भगवान का असली संदेश स्वीकार करोगे जो जीवन को सुखी बना सकोगे. तो आज जो हमने बोर्ड में श्लोक लिखा था, आए हम देहा देहा बाजे में लोके, ये एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का. भागवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कईयों ने इसे कंठस भी किया होगा, है ना? कितने भक्तों ने इसको कंठस किया हुआ है? तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है. चलो अनुवाद पढ़ो.
भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही अर्निहिश कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो विष्ठा भोजी कुकर और सूकर भी कर लेते हैं। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो दिव्य है और कभी भी ना अंत होने वाला है।
तो यह उपदेश भगवान ऋषभदेव जी दे रहे हो। आप ऋषभदेव जी से परिचित हो, ये भी भगवान के अवतार हैं और भगवान ऋषभदेव के माता पिता, भगवान के माता पिता जिनका नाम था महाराज नाभि और मेरु देवी, एक बड़े यज्ञ कर रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें भगवान प्राप्त हो, भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ये तो असंभव है, कौन हो सकता है मेरे जैसे, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। भगवान पुत्र बने ऋषभदेव जी के रूप में। तो भगवान ऋषभदेव का उपदेश भागवतम के पांचवें स्कंद में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में शुरू से समाप्ति तक अलग अलग भक्तों द्वारा हमें उपदेश प्राप्त हो रहा है। कभी भगवान ऋषभदेव उपदेश दे रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं, कभी इंद्र जी दे रहे हैं, पर इन सबका निर्णय क्या है कि भक्ति योग ही एक साधन है जिसके द्वारा आप जीवन को सफल बना सकते हो। भगवद गीता का भी निर्णय क्या है, भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा आप भगवान को समझ सकते हो। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान ऋषभदेव क्या कह रहे हैं, वो उपदेश किसको दे रहे हैं, अपने पुत्रों को। उनके 100 पुत्र थे और उनको क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो हमें दिन रात परिश्रम नहीं करना चाहिए केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की सुविधा पशुओं को भी प्राप्त होती है। ये नहीं कि केवल जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं उन्हें ही इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त होती है। इंद्रिय तृप्ति की सुविधा जैसे भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं पशुओं को भी प्राप्त होती है, इसलिए हमें इस जीवन का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में आगे जाकर भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं न्यूनम प्रमता कृते विकर्मा, कि जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है वो व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा कि आज जो ध्येय है उसके पास उसको केवल कष्ट दे रहा है और इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ने के का क्या परिणाम होगा, फिर से आपको एक ध्येय प्राप्त होगा जो आप क्या आपको केवल कष्ट ही देगा। तो वो कह रहे हैं हमें इस शरीर के द्वारा क्या करना चाहिए, तपस्या उठानी चाहिए। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं गीता के यह 3 चीजें हमें नहीं त्यागनी चाहिए कभी भी। ये साउंड ठीक है, लगता तो नहीं है, ठीक सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, मुझे तो लगता है कि वॉइस क्रैक कर रही है इसमें। अब सुनाई दे रहा है? कई बार सुनाई देता है पर समझ नहीं आता। नहीं तो क्लियरली सुनाई दे रहा है? अच्छा अच्छा, तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं तीन चीजें हमें किसी हालत में नहीं त्यागना चाहिए। क्या है ये तीन कार्य? यज्ञ, आना और तपस्या। तो हमारे शास्त्र में तपस्या पर बल दिया जाता है और यहां भगवान कह रहे हैं तपस्या का पालन करो। किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। वैसे देखा जाए भौतिक जीवन में भी तपस्या है और यहां वो कह रहे हैं तपस्या का पालन करो किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो क्या है तपस्या इस कलयुग में? बुरे कामों से बचो, भगवान की सेवा में मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो, इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकोगे। भगवान गीता में कहते हैं मन मन बाबा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, मन द्वारा मेरा चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो, भगवान की शिक्षा का उपदेश का चिंतन करो। तो मैं कह रहा था संक्षेप में आपको जगराज जी की कथा सुनाएंगे, ये बोर्ड श्लोक लिखा हुआ था बोर्ड में, तो हमने कहा कि संक्षेप में श्लोक को भी पढ़ दिया जाए। तो आज से हजारों हजारों साल पूर्व सत्ययुग में एक राजा थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। ऐसे तो जगन्नाथ जी की कई लीलाएं हैं और कई कथाएं हैं, मैं केवल संक्षेप में आपको संदेश दे रहा हूं। तो महाराज इंद्रद्युम्न जो थे, महाराज इंद्रद्युम्न जो थे भगवान कृष्ण के बड़े ऊंचे कोटि के भक्त थे। दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, और कोई भाव नहीं। संतों की सेवा कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए, ऐसे वैदिक शास्त्र में आप पढ़ते हो अनेक राजा जो कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न संतों को भी आदर देते थे, संतों का स्वागत करते थे। तो एक दिन एक संत उनके महल में आया और महाराज इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु की सेवा के अलावा और कोई भाव नहीं था। अगर आज के नेताओं में ऐसा भाव हो तो समाज की स्थिति अच्छी हो। तो एक दिन एक संत आया उनके महल में। संत ने कहा मैं जानता हूं कि आपके मन में एक ही भाव है, विष्णु की सेवा, और आप शायद जानते नहीं कि भगवान खुद प्रकट हुए हैं एक मूर्ति में जिनका नाम है नीलमाधव, और वो मूर्ति इतनी खूबसूरत है कि अगर आप देखोगे तो आपका दिल अत्यंत सुखी हो जाएगा। दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक है सेल्फ मैनिफेस्टर, हिंदी में क्या कहते हैं सेल्फ मैनिफेस्टर, वो स्वयं प्रकट होती हैं। अब ये नहीं कह सकते कि इस जयपुर के कारीगर ने मूर्ति बनाई थी और इसने स्थापना की, स्वयं प्रकट होते हैं। और दूसरी हैं मूर्तियां जो मैनिफेस्ट, जो आप बनवाते हो, फिर हम शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार ब्राह्मणों के सहयोग से उनकी स्थापना करते हैं। यहां से आपके इस मंदिर में श्री श्री कृष्ण बालराम राधिका नमन जगन्नाथ सुभद्रा बालराम, ये सब मूर्तियां बनाई गई थी और फिर उनकी स्थापना की थी शास्त्रों के अनुसार। तो ये जो नीलमाधव की मूर्ति है इतनी खूबसूरत है कि एक बार देखोगे कि आपका दिल बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। और ये कह के वो संत अप्रकट हो गया, चल पड़ा वहां से। तो राजा के मन में यही भाव था, ये नीलमाधव की मूर्ति कहां मिलेगी उन्हें, कुछ पता तो उसने दिया नहीं कि ये मूर्ति इस ठिकाने में है। सिर्फ ये कहा कि भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है नीलमाधव के रूप में, और इस मूर्ति का दर्शन जो भी लेगा अत्यंत आनंद अनुभव करेगा। तो राजा था, उसने समाज के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और सबसे कहा, पूछा, आप में से किसी ने नील माधव का दर्शन लिया है? सबने कहा नहीं। नील माधव का नाम सुना है? सबने कहा नहीं। तो आप सब घर घर जाओ, गांव गांव जाओ और ढूंढो नील माधव को। कई ब्राह्मणों को भेज दिया नॉर्थ, कईयों को साउथ, कईयों को ईस्ट, कईयों को वेस्ट, इस पृथ्वी के सारे। आज तो जब हम भारत की चर्चा करते हैं सब ये इंडिया देश, और उस समय पूरे विश्व का एक ही सम्राट था। तो ये ब्राह्मण गए, घर घर गए, गांव गांव गए, सब जगह गए, सारे ब्राह्मण वापस लौट आए, कहने लगे हम घर घर गए, गांव गांव गए, हमें तो किसी मंदिर में नील माधव की मूर्ति नहीं मिली, और किसी ने नील माधव का नाम भी नहीं सुना, मूर्ति की तो बात ही छोड़ो। तो सब वापस आ गए। राजा बड़ी बड़ा परेशान था। दिन रात उनके मन में यह भाव था, नील माधव का दर्शन उन्हें कैसे मिले? जब तक नील माधव का दर्शन नहीं मिलेगा जीवन असफल माना जाता है। राजा बड़ा दुखी था। राजा के सारे ब्राह्मण तो वापस लौट आए, पर एक ब्राह्मण नहीं लौटा जिसका नाम था विद्यापति। विद्यापति जंगल के गहराई में गया नीलमाधव को ढूंढने के लिए। जंगल में रहा काफी समय के लिए, और जंगल में एक ट्राइब थी, कई लोग रहते थे जो कि जानवरों की देखभाल करते थे, बड़े पतित समाज के लोग थे। उनके नेता का नाम था विश्वासु। विश्वासु हालांकि नीची जाति का था, जैसे आजकल हम ऊंची जाति नीची जाति की बात करते हैं, विश्वासु था नीची जाति का और बहुत गरीब, पर सेवा भावना थी और सेवा के अलावा और किसी चीज में उसकी रुचि नहीं थी। इस विश्वासु की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता, और विद्यापति उनके घर में रुक गया रहने के लिए। विश्वासु नीची जाति का था, विद्यापति ऊंची जाति का ब्राह्मण, पर विद्यापति विश्वासु के भक्ति से बड़ा प्रभावित था। और जैसे भक्ति में हम ये नहीं देखते कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है, जैसे कि इस्कॉन के मंदिरों में हर व्यक्ति आ सकता है दर्शन के लिए, हम आपसे ये नहीं पूछते आपका गोत्र क्या है, हिंदू हो मुसलमान हो, ना ही हम ये पूछते हैं आप ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो। असल में इस कलयुग में सभी नीची जाति के हैं, कलो शूद्र सुमव, ये है शास्त्रों का निर्णय। तो विश्वासु बड़ा प्रभावित हुआ था विद्यापति की सेवा भावना से। और विद्यापति ने, हालांकि विश्वास नीची जाति का था, उसके घर में वो रह रहा था, और उनकी विश्वासु की बेटी का नाम क्या था, ललिता। तो विश्वासु ने ललिता से विद्यापति की शादी करवा दी वहां, और विद्यापति ने ललिता को स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में, हालांकि वो नीची जाति की थी, उसके भक्ति के गुणों को देखकर। तो विश्वासु भक्त था, जैसे मैंने कहा, रोज दोपहर को घर से वो निकल जाता था और किसी जंगल में जाकर एकांत में वो लौटता था अगले दिन 24 घंटे बाद। और जब वो लौटता था तो उसके पूरे शरीर में खूबसूरत, बड़ा सुंदर भाव था और सुंदर खुशबू, जैसे चंदन आप लगाओ तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो जब विश्वासु लौट के आता था 24 घंटे के बाद, तो उसके शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आती थी, ऐसे लगता था कि वो स्वर्ग से आया है। तो विद्यापति ने देखा, बड़ा ये चंदन जैसे खुशबू है। तो वो जब जिज्ञासु हो गया, उसने उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पिता कहां जाते हैं रोज, दोपहर को चले जाते हैं, अगले दिन 24 घंटे बाद वापस आते हैं, वो जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो वैकुंठ धाम से आ रहे हैं, पूरे शरीर में चंदन की खुशबू आती है, कहां जाते हैं। बेटी को बाप ने कहा था, किसी को बताना नहीं मैं कहां जाता हूं। तो पहले तो ललिता ने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे पिताजी कहां जाते हैं, मेरे पिताजी ने खास वचन लिया है मेरे से, किसी हालत में किसी को नहीं बताना कि मैं कहां जाता हूं। पर विद्यापति ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारा पति हूं, मैं इसे थोड़ी छुपाओगे, तो बताओ। फिर उसने बताया, उसने कहा, जंगल के गहराई में एक विग्रह है नील माधव का, किसी ने उसका दर्शन नहीं लिया है, मेरे पिताजी जाते हैं नील माधव की सेवा करने के लिए, और मेरे पिताजी किसी को नील माधव का दर्शन लेने नहीं देते, ना सेवा करने देते हैं। वो जाते हैं जंगल में रोज, जंगल में फूल तोड़ते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, फल भगवान को भोग लगाते हैं, फूल इकट्ठा करके रोज नील माधव का हार बनाते हैं, और जब उनकी सेवा करके वो लौटते हैं तो ये खुशबू आपको सूंघने को मिल रही है। तो विद्यापति ने कहा, मैं नील माधव का दर्शन ले सकता हूं, आप मुझे बता सकते हो कहां है नील माधव? क्योंकि जैसे ही विद्यापति ने नील माधव का नाम सुना, उसने कहा, मैं इसी नील माधव को खोजने तो निकला था, महाराज जिंदा तुमने कहा यही तो आदेश था, घर घर जाकर नील माधव का पता लगा, नील माधव कहां है। तो विद्यापति तो बड़ा खुश हो गया था, पर उसकी समस्या यही थी नील माधव का दर्शन कैसे मिले। तो पत्नी ने कहा, दर्शन तुम्हें किसी हालत में नील माधव का नहीं मिलेगा। खैर, इनकी इच्छा थी विद्यापति का कि पता लगाए विद्या नील माधव कहां है। तो उसने अपने पिता से कहा, मेरे पति की बड़ी इच्छा है कि नीलमाधव का दर्शन मिले और ये पता लगे कि नीलमाधव है कहां। विद्यापति ने बोला नहीं पत्नी को कि मैं महाराज इंद्रदमन के आदेश के अनुसार निकला था नीलमाधव को ढूंढने के लिए। विश्वासु ने कहा, ललिता के पिता ने, मैं किसी हालत में विद्यापति को ये नहीं बताऊंगा नीलमाधव कहां है, पर यह जरूर कर दूंगा क्योंकि वो मेरी बेटी का पति है, नीलमाधव का उन्हें दर्शन करा दूंगा, दर्शन कर और मैं उन्हें ले जाऊंगा वहां आंखों में पट्टी लगाकर। आपकी आंखों में पट्टी हो, कोई आपकी उंगली पकड़कर ले जाए तो आपको क्या पता लगेगा कहां ले जा रहा है ना। तो विश्वासियों की चिंता क्या थी कि विद्यापति को पता नहीं लगे नीलमाधव कहां है, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया नीलमाधव कहां है तो उधर पहुंच जाएगा खुद ही सेवा करने के लिए। तो पत्नी बेटी ने कहा, ठीक है मंजूर, आप मेरे पति की आंखों पर पट्टी लगाकर हाथ पकड़कर उन्हें ले जाना। पर ललिता और विद्यापति ने, वो जरा होशियार थे, ललिता ने एक छोटी थैली में मास्टर को क्या कहा, तिल के सरसों के बीज के ओर एक कपड़े में लपेट कर पति को दे दिया, जिसने अपनी धोती के साथ जोड़ दिया। और विचार यह था कि जब विश्वासु विद्यापति को हाथ पकड़कर ले जाएगा तो विद्यापति रास्ते में उस सरसों के तेल को फेंकते जाएगा, तो इस प्रकार निशाना रहेगा कि नीलमाधव का मंदिर, नीलमाधव कहां प्रकट है। तो पहुंचे ये लोग नीलमाधव पर, और जब नीलमाधव के पास पहुंचे तो विश्वासु ने आंख की पट्टी खोल दी। जब आंख की पट्टी खोली और विद्यापति ने नीलमाधव का दर्शन लिया, ऐसा आनंद अनुभव हुआ, उसे लगा कि मैं भगवान के निकट हूं। असल में इस आर्चर विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। कम बुद्धि के लोग सोचते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, ये वैष्णव लोग तो मूर्ख हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ईसाई लोग कहते हैं तुम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हो। हां, भगवान अपने आप को किसी रूप में भी, किसी प्रमाणिक आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट कर सकते हैं, पर इस आचार्य विग्रह भगवान में अंतर है नहीं। अगर हम सोचेंगे कि लकड़ी के जगन्नाथ जी हैं तो लकड़ी के ही रहेंगे, अगर आप सोचोगे यहां भगवान स्वयं उपस्थित हैं तो फिर भगवान का दर्शन भी मिलेगा। तो विद्यापति ने जब नीलमाधव का दर्शन लिया, उन्हें ऐसे लगा कि वो वैकुंठ धाम पहुंच गए हैं। उन्हें इतना आनंद आया कि वो सोच रहे थे, मेरे राजा की जो इच्छा थी, सच्ची इच्छा थी, उन्हें अंदाजा था, क्योंकि वो संत ने कहा था क्या, एक नीलमाधव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, उनका दर्शन लोगे तो ऐसा आनंद आएगा जैसा आपको लगेगा कि आप वैकुंठ धाम में हो। तो विश्वासी ने आंख की पट्टी खोल दी और विश्वासी गए जंगल में, फूल इकट्ठे किए, भगवान का हार बनाया नीलमाधव का, फिर फल इकट्ठे किए भगवान को भोग लगाने के लिए। ये विश्वासु सब काम अकेले करता था रोज। तो वहां नीलमाधव के मूर्ति के सामने एक छोटा सा तालाब था और तालाब के ऊपर, तालाब के साथ में एक पेड़ था और पेड़ में एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवे को नींद आ गई, नींद आ गई तो तालाब में गिर गया। तो विद्यापति ने देखा उस कबे को गिरते हुए, तालाब में गिरकर गिरा, और तुरंत ही उसने वैकुंठवासी का रूप धारण कर लिया तुरंत ही। और ये दिव्य रूप प्राप्त करके भगवान के धाम चले गया विद्यापति की आंखों के सामने। तो विद्यापति सोचने लगा मुझे भी इस तालाब में आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मेरी आंखों के सामने ये कौवा गिरा और कौवा ने तुरंत ही दिव्य रूप ग्रहण करके सब मेरे सामने भगवान के धाम चले गया। तो मैं भौतिक संसार में क्या करूं, भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है, कोई सुख नहीं, पर इस तालाब में आत्महत्या कर लूंगा तो मुझे भी ये दिव्य रूप प्राप्त हो जाएगा और मैं भगवान के धाम लौट जाऊंगा। तो सोच रहा था इसलिए ये तालाब में आत्महत्या कर लूं, क्योंकि उसने देखा कि इस तालाब में जो भी गिरता है एकदम विष्णु का रूप ग्रहण कर लेता है। तो फिर एक दिव्य वाणी सुनाई दे रहा है भाई, दिव्य वाणी ने कहा विद्यापति तुम डरपोक क्यों बन रहे हो, तुम आत्महत्या की सोच रहे हो, तुम निकले थे वहां इंद्रदमना की इच्छा पूरी करने के लिए, क्या थी उनकी इच्छा, नील माधव को ढूंढ के लाओ इस विश्व पर किसी कोने से भी, और अब तुम्हें नील माधव का दर्शन मिल गया है, अब तुम्हें पता है नील माधव कहां है, जाओ राजा को ये सूचना दो और राजा से कहो कि आपने नील माधव को खोज लिया है, आत्महत्या का विचार छोड़ दो। तो विद्यापति जैसा सोचने लगा, हां राजा तो बड़ा खुश हो जाएगा जब उसे सूचना मिलेगी कि नील माधव को उसने खोज दिया है। पर विद्यापति ने, और फिर भगवान एक दिव्य वाणी ने विश्वासों से कहा, इतनी देर से तुम मेरी पूजा कर रहे हो जंगल में, तुमने मुझे बड़ी कठिन परिस्थितियों में रखा है, खाने के लिए पुराने फल हार, मैं अब किसी भव्य मंदिर में रहना चाहता हूं, और महाराज इंद्रदुम्ना की इच्छा है कि मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बनाया जाए। मंदिर का अर्थ क्या है, मंदिर का अर्थ है वो स्थान जहां भगवान निवास करते हैं। आप देखते हो भारत में भी और सारे विश्व में जैसे लोग धन कमाते हैं तो क्या इच्छा होती है, कोठी बनाओ, है ना, बड़ी से बड़ी कोठी, और किस लिए, शान के साथ रहने के लिए, कईयों की 100 कमरों की कोठी है। पर भक्त क्या सोचता है, पहले हम भगवान की कोठी बनाएंगे। मैं जब दुबई में था, मैंने भक्तों से पूछा ये हर चार कदम में एक मस्जिद है, ये मस्जिद बनाता कौन है सरकार, कहते नहीं ये मुसलमान लोग खुद बनाते हैं, पहले भगवान का मस्जिद बनाएंगे फिर अपनी कोठी बनाएंगे। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा अच्छा भाव है, हमारा हिंदुओं में क्या भाव है, पहले 10 कोठियां बनाओ फिर भगवान का सोचेंगे, अपनी कोठी बनाओ, बच्चों की कोठी बनाओ, सबकी बनाओ, अंत में सोचेंगे भगवान के लिए भगवान की कोठी, मंदिर मतलब भगवान की कोठी। तो भगवान ने कहा, एक दिव्य वाणी ने कहा विश्वासु से कि मैं इतनी देर से इस जंगल में तुम मेरी पूजा कर रहे हो, पर मैं भव्य स्थान में रहना चाहता हूं, और महाराज इंद्रदमना की तो इच्छा है कि मेरे लिए मंदिर बनाए। तो विश्वासु घबरा गया, उसने विद्यापति को गिरफ्तार कर लिया, उसने कहा अगर तुमने वहां जिन दुमना को सूचना दी कि कहां है नील माधव, नील माधव को की स्थापना करेंगे वो बड़े मंदिर में, तो मुझे नील माधव की सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं हूं नीची जाति का और नीची जाति के व्यक्ति को बड़े मंदिर में कोई जाने ही नहीं, घुसने ही नहीं देगा। ये अफसोस की बात है। हमारे गुरुजी ने भी इसका विरोध किया कि हमारे हिंदू रिवाज, हिंदू समाज में प्राचीन समय में नीची जाति के लोगों को कई बार मंदिर में आने नहीं देते थे। तो विश्वासियों ने कहा हमें तो, मुझे तो मंदिर में लोग आने ही नहीं देंगे। तो उन्होंने विद्यापति को गिरफ्तार कर लिया। तुम जाकर इंद्रदमन महाराज को कह दो कि नील माधव कहां है। खैर फिर बेटी के कहने पर पति को छोड़ दिया और विद्यापति लौटे बड़ी खुशी के साथ महाराज इंद्रदमन के पास। जब महाराज इंद्रदमन के महल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने नील माधव को खोज लिया है, मुझे पता है नील माधव कहां है। राजा बहुत खुश हुआ और विद्यापति ने कहा यह सच है, अगर एक बार आपको नील माधव का दर्शन मिल जाए तो आपका हृदय एकदम संतुष्ट हो जाएगा। तो राजा की बड़ी इच्छा थी कि मुझे नील माधव का दर्शन मिले और रास्ता जानने के लिए क्या क्या था विद्यापति ने, सरसों के बीज को छोड़ा, वो बीज अभी बन गए थे पेड़। तो महाराज इंद्रदमन अपनी सेना को लेकर बड़े आगे विश्वासों के साथ विद्यापति के साथ, और विद्यापति उनको लेकर आ गए कहां, जिस स्थान में नील माधव ने अपने आप को प्रकट किया था। तो जब वो पहुंचे वहां जिस स्थान में नील माधव ने प्रकट किया था, नील माधव वहां थे ही नहीं, वो प्रकट हो चुके थे। तो महाराज इंद्रदमन ने कहा ये क्या बेईमानी है, विश्वासों की शैतानी होगी, इसे गिरफ्तार कर लो। तो उन्होंने विश्वासों को गिरफ्तार कर लिया और ये कहा मुझे बताओ कहां है नील माधव, तुमने कहां छुपा दिया है नील माधव को, इतनी दूर से मैं आया हूं नील माधव का दर्शन देने के लिए। विश्वासी ने कहा मुझे खुद नहीं पता कहां प्रकट हो गए, मैं खुद दुखी हूं कि कहां चले गए नील माधव। फिर एक दिव्य वाणी ने कहा महाराज इंद्रदमन मैं अब नील माधव के रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, ये रूप अप्रकट हो गया है, पर यही नील माधव प्रकट होंगे। किस रूप में? दारू ब्रह्मा के रूप में, दारू ब्रह्मान मतलब लकड़ी के रूप में। और ये दारू ब्रह्मान कहां प्राप्त होगी? उन्होंने कहा दरिया में, किस स्थान में। तो इससे पहले जब महाराज इंद्रदमन पहुंचे नील माधव के दर्शन के लिए, नील माधव नहीं मिले, अप्रकट हो चुके थे, महाराज इंद्रदमन ने सोचा ये सब उनके पापों का परिणाम है। जो भक्त है कभी किसी को दोष नहीं देता, वो दोष केवल अपने आप को देता है। वैसे तो हम सोचते हैं ये दोषी है, ये दोषी है, इसने ये की, इसने ये किया है कि नहीं, और हम दोष देते रहते हैं सबको और ये स्थापना करते हैं कि हम निर्दोष हैं बाकी सब दोषी हैं। पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो किसी और को दोषी नहीं बनाते। तो महाराज इंद्रदमन ने ये नहीं कहा, सोचा कि किसी ने कुछ शरारत की है, वो सोचने लगे ये मेरे पापों का परिणाम है कि मुझे नील माधव का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ और उन्होंने तपस्या व्रत रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिव्य वाणी ने कहा हे राजा मैं अब अप्रकट हो गया हूं और मैं अब प्रकट होऊंगा दारू ब्रह्मा के रूप में, और ये दारू ब्रह्मा तुम प्राप्त करोगे इस दरिया में। तो फिर महाजन अपना अपनी की एक सेना के साथ वापस लौटे और उन्होंने देखा दरिया में बिग लॉग ऑफ वुड लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैर रहा था। वो देखा कि उस लकड़ी के टुकड़े में सारे विष्णु के निशाने थे। तो महाराज इंद्रदमना ये देख के बड़े खुश हुए, पर उन्होंने जब उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने का प्रयास किया तो एक सेंटीमीटर भी वो हिला नहीं। फिर उन्होंने अपनी सेना से कहा तुम सब मिलकर उठाओ, क्योंकि महाराज इंद्रदमना की इच्छा थी भगवान का रूप बनाया जाए तो नील माधव का दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि नील माधव दिव्य वाणी ने कहा था अब मैं नील माधव के रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, मैं दारू ब्रह्मा या लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। तो राजा ने प्रयास किया, पूरी सेना ने प्रयास किया उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने के लिए, कोई उठा नहीं पाया। तो राजा फिर दुखी हो गया, देखो मेरी क्या किस्मत, पहले हम जंगल में गए नील माधव का दर्शन लेने के लिए, वहां पहुंचे भगवान ही प्रकट हो गए। फिर भगवान ने कहा कि दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट होंगे, यहां हम पहुंचे तो हम इस लकड़ी के टुकड़े को उठा ही नहीं पा रहे, पूरी सेना उठा नहीं पा रही। तो राजा दुखी हो गया, फिर उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। फिर एक दिव्य वाणी ने कहा अगर तुम इस लकड़ी के टुकड़े को उठाना चाहते हो तो मेरे जो दो प्रसिद्ध भक्त हैं जिन्होंने मेरी बहुत सेवा की है विश्वासु और विद्यापति, उन्हें बुला कर लाओ, वो अगर मुझे छुएंगे तो मैं एकदम उठ जाऊंगा, उन्हें उठाने दूंगा। और एक राजा एक सोने का रथ भी लेकर आया। तो विश्वासु और विद्यापति जब आए उन्होंने बड़े आसानी के साथ उस लकड़ी के टुकड़े को उठा लिया। तो भगवान को समझना आसान नहीं है, पर भक्त के लिए सेवो मुखी जीव दो, भक्ति के माध्यम के द्वारा भगवान को सरलता के साथ समझ सकते हो, पर अगर आप अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझने जाओ तो असंभव है। तो बड़ी सरलता के साथ विश्वासु और विद्यापति ने लकड़ी के टुकड़े को उठा लिया और लकड़ी का टुकड़े को ले आए राजा के महल में। अब अगला क्या कार्य था, भगवान का एक रूप बनाना। तो महाराज इंद्रदमना ने उस समय के जितने प्रसिद्ध स्कल्प्टर थे, स्कल्प्टर शिल्पकार सारे आए, सबने प्रयास किया पर कोई भी सफल नहीं हुआ। जैसे ही वो लकड़ी को हाथ लगाते थे उनका हथियार टूट जाता था या उनके हाथ को कुछ हो जाता था, सब असफल हो गए। तो राजा फिर चिंता में, अब क्या किया जाए, लकड़ी भी महल में आ गई है पर कोई भी इसका तो कुछ कार्य कर ही नहीं पा रहा, जो भी इसको छूता है उसके हथियार ही तुरंत टूट जाते हैं। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति जो विश्वकर्मा था, विश्वकर्मा हैं तो देवताओं के महलों घरों को बनाते हैं, विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आया और विश्वकर्मा ने कहा अब भगवान का रूप बनाना चाहते हो मैं बना दूंगा, पर एक शर्त पर, मुझे 21 दिन के लिए बिल्कुल एकांत में कार्य करना है और 21 दिन के लिए कोई कमरे के अंदर नहीं आए, मैं अकेले बैठकर ये भगवान का रूप बनाऊंगा और अगर कोई अंदर आएगा तो मैं तुरंत ही अप्रकट हो जाऊंगा। तो राजा ने कहा शर्त मंजूर है आपकी, तो विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और ठिक 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 करके भगवान का रूप बनाना शुरू किया। महाराज इंद्रदमना दरवाजे के बाहर बैठे थे और बड़े ध्यान से उस टिक 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 को सुनते थे। जब वो उस टिक 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 को सुनते थे उनको ऐसे लगता था कि मैं करताल और हरे कृष्ण सुन रहा हूं। जब हम बॉम्बे मंदिर बना रहे थे श्रील प्रभुपाद उस समय पांचवी मंजिल बॉम्बे का मंदिर कैसा है और छह मंजिल का है, तो छठी मंजिल में प्रभुपाद जी निवास कर रहे थे, पांचवी मंजिल में, और नीचे कारीगर काम कर रहे थे क्योंकि मंदिर खुला नहीं था। तो प्रभुपाद जी सुनते थे टिक 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 निशानी ऊपर पांच मंजिल तक। और प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज स्वीट म्यूजिक, इट इज लाइक कीर्तन। मतलब उनको लगता था ये कीर्तन जैसा है। क्यों? ये टिक टिक हो रहा है किस लिए? क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है। अभी आप लोग रोहिणी में मंदिर बनाओगे तो हमें टिक 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 सुनाया जाएगा। तो आप लोग ये नहीं कहना अरे ये आवाज हमको नहीं चाहिए, ये है, ये टिक टिक हो रहा है किस लिए? भगवान का मंदिर तैयार हो रहा है। तो राजा को बड़ा आनंद आ रहा था टिक 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 सुनकर। पर की पत्नी गुंदीचा ने देखा कि दो हफ्ते बाद राजा ने देखा कि वो टिक टिक आवाज बिल्कुल बंद हो गई। और गुंदीचा कहने लगी हमें मुझे लगता है ये बूढ़ा आदमी मर गया है, हमने इसे दो हफ्ते के लिए कुछ खाने के लिए नहीं दिया, पीने के लिए नहीं दिया। तो राजा ने मंत्रियों की सलाह ली क्या करना चाहिए, अभी टिक टिक आवाज भी नहीं आ रही, अगर हम अंदर जाएं तो विश्वकर्मा प्रकट हो जाएंगे, क्या करना चाहिए? मंत्री ने तो राय दी अंदर मत जाओ, क्योंकि उसने कहा था अगर कोई अंदर आएगा तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा। पर गुंडीचा ने कहा नहीं नहीं जरूर जाओ। तो राजा पत्नी की बातों में आ गए और दरवाजा खोल के अंदर गए। जैसे ही अंदर आए विश्वकर्मा अप्रकट हो चुका था। और फिर जो राजा ने रूप देखा, ये रूप देखा जो आप देखते हो किसका? जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का। तो जब ये रूप पहले देखा विश्वकर्मा राजा ने तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलती की है जल्दी अंदर आकर, उनको नहीं आना चाहिए था, उनके हृदय में पछतावा था कि मैं अंदर क्यों आया, अभी ये रूप अधूरा रूप है भगवान का। अगर आप जगन्नाथ जी सुभद्रा बलराम के रूप को देखो तो शुरू में ये थोड़ा अधूरा दिखता है, पैर नहीं हाथ नहीं। फिर नारद मुनि वहां आए, उन्होंने कहा कि ये प्रमाणिक रूप है और फिर इसकी स्थापना की ब्रह्मा जी ने आकर। तो ये है संक्षेप में नील माधव की कथा जो प्रकट हुए किस रूप में? जगन्नाथ। हालांकि जगन्नाथ जी के कोई पैर नहीं है पर जगन्नाथ जी सारे विश्व में यात्रा करते हैं, है ना, उनके पास पैर नहीं है पर जब भी सारे विश्व में यात्रा करते हैं। कैसे यात्रा करते हैं? हाँ, रथ यात्रा के माध्यम से। तो भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं और आपके इस पंजाबी बाग के केंद्र में जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का भी दर्शन मिल रहा है, कृष्ण बलराम का भी, घोर निताई का भी और श्री राधिकानंद का भी, फोर इन वन सब विग्रह का दर्शन आपको यहां प्राप्त हो रहा है। तो आप सबको हर शनिवार को विदाउट फेल आना चाहिए साधु संघ। साधु संघ की आवश्यकता है अगर हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि इस जीवन का उपयोग करो किस लिए? तपस्या का पालन करने के लिए। और तपस्या के बदले में क्या मिलेगा? असली आनंद मिलेगा। बहुत से कार्यों के द्वारा जो आनंद मिल रहा है वो असली आनंद नहीं है, वो है नकली आनंद। अगर आपको असली सुख चाहिए तो हम सबको कृष्ण भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। और कृष्ण भक्ति स्वीकार कैसे होती है? जीभ द्वारा क्या करो? भगवान के नामों का उच्चारण। कानों द्वारा क्या करो? भगवान के उच्चारण को सुनो। नेत्रों द्वारा क्या करो? भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन लो। पैरों द्वारा क्या करो? भगवान के मंदिर चल के जाओ, या मोटर चला के जाओ, या स्कूटर चला के जाओ, पर भगवान के मंदिर पहुंचो इन पैरों के सहयोग से। और हाथों का उपयोग करो किस लिए? भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। ये नहीं कि हम मंदिर जाएंगे पर हमें केवल साफ की सेवा चाहिए। मंदिर में तुझ सेवा करो, जैसे महाराज प्रतापपुर झाड़ू दे रहे थे सड़क को और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो महाराज अम्बरीश मंदिर आके अपने हाथों से मंदिर को साफ करते थे। आप लोग कभी मंदिर आकर मंदिर को साफ करते हो? कितने लोग करते हैं मंदिर को साफ? बस एक दो। तो ये वर्ष तीन चार फैमिली हमारे मॉन्ट्रियल कैनेडा के मंदिर में एक कैनेडियन लड़का है, 35-40 सालों से रोज आता है बर्तन साफ करने के लिए 2 घंटे के लिए। मैं इस लड़के को 1970 में देखता था अभी, और जब भी जाता हूं देखता हूं, रोज आता है 2 घंटे के लिए सिर्फ भगवान के बर्तन साफ करने के लिए। पर आप में से कोई बर्तन साफ करता है भगवान जी का? हम कहते हैं अरे हम तो साहब है, हमको ये नौकर की सेवा दे रहे हो। भगवान के एक मंदिर में आकर आप लोग जितनी तुच्छ सेवा करोगे उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। ये हमें सिखों से सीखना चाहिए। वो जब बड़े से धनी से धनी सिख भी जब गुरुद्वारा जाता है तो तुच्छ सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार भक्ति में जुड़ो और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपके इस सभा में कई रोहिणी के भक्त हैं, कई पंजाबी भाग के। पहले तो रोहिणी के भक्त भी पंजाबी भाग के थे, अब जरा बंटवारा हो गया, डाइवोर्स। अब क्योंकि रोहिणी में मंदिर बन रहा है तो आपको रोहिणी के साथ जोड़ा जाता है। तो रोहिणी का मंदिर भी शुरू होने जा रहा है, बहुत ही जल्द है ना। और आपको जानकर खुशी होगी, जैसे आपका ये प्रोग्राम इधर हो रहा है, दिल्ली में कई स्थानों में प्रोग्राम हो रहे हैं, गाजियाबाद में मंदिर है, फरीदाबाद में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, बहादुरगढ़, पंचशील, और अब द्वारका में भी शुरू कर रहे हैं। आप लोग शायद वर्ल्ड होली नेम डे वाले दिन गए थे द्वारका में ना, अच्छा लगा? तो प्रभा जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से विश्व के हर कोने में यह हरि नाम पहुंच रहा है। तो सब हरि नाम का जाप कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।